100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल कार्यक्रम छू लो आसमान। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं रेखा राणा, जो है जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड विनिंग अभिनेत्री एंड फिलेंथ्रोपिस्ट।
आज हमारे साथ हैं रेखा राणा जी। ये हैं एक अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर भी हैं, उसके साथ साथ ऑलरेडी फिलैंथ्रोपिस्ट बन गई हैं। वेलकम रेखा जी टू ऑल इंडिया रेडियो।
थैंक यू वेरी मच।
सबसे पहले क्वेश्चन जो है
जी,
हम जा रहे हैं आपके अवार्ड्स पे, थोड़ा जंप करके चले जाएंगे।
ठीक है।
आपको 35 या 40 अवार्ड मिले हुए हैं अभी।
yes.
तक एज बेस्ट एक्ट्रेस एंड मैनी थिंग्स।
mm-hmm.
तो इसमें से क्या स्टैंड आउट करता है आपके माइंड में? को सारे के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक दो बताइए।
मेरे दिमाग में जो मेरा सबसे पहला अवार्ड था, जो मुझे मिला था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस, जब मेरी फिल्म वहां पे चल रही थी तारा द जर्नी ऑफ लव एंड पैशन। वहां पे जो प्रेसिडेंट ऑफ द जूरी थे वो ऑस्कर अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर थे, जिनका नाम है मार्क बैशे, और जिन्होंने फिल्म बनाई थी नो मैंस लैंड के लिए, उनको बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मिला था। वो प्रोड्यूसर है लंच बॉक्स और अदर फिल्म्स के भी। जिस दिन वो मुझे अवार्ड मिला बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का, तो सब लोग मीडिया वाले लोग जब मेरा इंटरव्यू लेने आए, तो मैं मीडिया के सामने थी, इंटरव्यूज दे रही थी, और मैंने अपना अवार्ड किसी के हाथ में पकड़ा दिया। जब मैंने देखा इंटरव्यू खत्म हुए और मैंने ढूंढा अपना अवार्ड, सो दैट पर्सन वॉज नॉट देयर। वो पर्सन जिसको मैंने दिया था अवार्ड, वो गायब हो गया। तो उस दिन जब सब लोग डिनर पे बैठे थे और मैं रो रही थी, इला अरुण जी और नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब लोग वहां पे थे, तो उस दिन मार्क बैशे ने मुझे समझाया कि तुमने अपना अवार्ड किसी को क्यों दिया? अगर तुम्हारे हाथ में कुछ ज्वेलरी होती
तो
या
क्या?
कुछ वैल्यूएबल होता,
हाँ,
या कुछ सोने की चीज होती या कुछ डायमंड्स होते, तो तुम किसी को देते
क्या?
नहीं। तो
उन्होंने
उन्होंने मुझे उस दिन वैल्यू सिखाई, कैसे दिस इज
मोर
वैल्यूएबल देन योर ज्वेल्स।
यस।
तो उसके बाद जितने भी मुझे अवार्ड मिले, मैं जब तक होटल नहीं पहुंची या जब तक अपने घर नहीं पहुंची, मैंने वो अवार्ड छोड़ा ही नहीं अपने हाथ से।
बिकॉज ना, ज्वेलरी तो आप फिर भी जाके खरीद सकते हैं।
यस।
अवार्ड कैसे मिलेगा?
बहुत बहुत मेरा पहला ही एक्सपीरियंस ऐसा था जिसने मुझे इतना कुछ सिखा दिया कि मैंने उसके बाद अवार्ड की वैल्यू करना, क्योंकि ये मेरे लिए ऑडियंस का सम्मान है, प्यार है ऑडियंस का। बेशक कितने भी लोगों ने मूवी देखी पर पसंद की और उसके अगेंस्ट मुझे एक अवार्ड मिला, तो मैंने उस चीज की वैल्यू जानी। और आज मेरे घर में एक बहुत सुंदर सी एक मैंने अलमीरा है ग्लास की, हाँ जी, तो मैंने उसमें लगा के रखी है। और मैं जो मेरी मेड है उसको डेली बोलती हूँ कि डेली सब सफाई होनी चाहिए, डेली मेरे सब अवार्ड साफ होने चाहिए कि उनमें थोड़ी सी भी धूल नहीं जमे। दिस इज मोर वैल्यूएबल टू मी देन द ज्वेलरी।
ये स्टोरी तो किसी को पता नहीं होगा
अवार्ड के बारे में, किसी को नहीं पता,
आज लोग जान गए हैं।
यस।
हमारे जो दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू हियर दिस।
थैंक यू।
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, अनहोनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। परम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला।
आपकी एक फिल्म ऑस्कर नॉमिनेट हुई थी
जी,
विच फिल्म वॉज दैट?
एक नहीं, मेरी दो फिल्में ऑस्कर में गई है। सब लोग जान जाएंगे कि दो फिल्में हैं।
ओके, तो फर्स्ट कौन सी थी?
तो मेरी पहली फिल्म तारा द जर्नी ऑफ लव एंड पैशन, डायरेक्टेड बाय कुमार राज, प्रोड्यूस बाय कुमार राज प्रोडक्शन। वो फिल्म ऑस्कर की एंट्री बनी क्योंकि उसमें जो प्रोड्यूसर्स थे, जॉइंट वेंचर था हमारा इसके साथ, अफ्रीकन कंट्री के साथ।
अच्छा।
तो वो फिल्म अफ्रीका से, वेस्ट अफ्रीका से सेलेक्ट हुई ऑस्कर की एंट्री बनने के लिए। इंडिया से मेरे प्रोड्यूसर्स ने नहीं भेजा, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि अफ्रीकन कंट्री से, वेस्ट अफ्रीका से हम लोग भेजते हैं। तो वो मेरी पहली फिल्म थी जो ऑस्कर में थी। और इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी भी जुड़ी हुई है जो मैं बताती हूँ आपको। मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, मेरी मूवी की स्क्रीनिंग थी तारा की, और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स थे मेरे साथ। वो फेस्टिवल का नाम था आईफेफा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
अच्छा।
तो वहाँ पे ईशा गुप्ता, आफ्ताब शिवदेसानी और काफ़ी बड़े सारे एक्टर्स थे। तो उसमें एक जो सीनियर एक्टर हैं वो भी थे, आई विल नॉट टेक हिज नेम, मैं उनका नाम नहीं लूंगी।
हम गेस कर सकते हैं?
नहीं।
अच्छा चलिए, आप ही बोलिए।
तो मुझे उन लोगों को, स्पेशली वो एक्टर को काफ़ी प्रॉब्लम थी कि ये यहाँ पे हम लोगों के साथ ये स्टेज क्यों शेयर कर रही है। उनको ये खुशी नहीं थी कि वो वहाँ पे, उनको प्रॉब्लम ये थी कि रेखा राणा यहाँ पे क्यों है। तो मुझे बहुत सैड लगा, मुझे काफ़ी दुख भी हुआ। उन्होंने मेरे साथ जो ट्रीटमेंट किया और उन्होंने बोला कि अरे यू नो, इसने तो, हमने इतनी सारी फिल्म की हैं, इसको यहाँ पे क्यों बुलाया है। वो मतलब मुझे एक टैग दे रहे थे कि शी इज़ नोबडी। जिस दिन मैं रो रही थी रात को, और मुझे याद है कि मैं रात को 3 बजे सोई थी, और 2:30 बजे जब मैं रो रही थी, मैं बहुत परेशान थी कि ऐसा क्यों मेरे साथ रिएक्ट कर रहे हैं ये लोग। तो 2:30 बजे मुझे मेरे प्रोड्यूसर का मैसेज आया, बिकॉज ही वॉज इन अफ्रीका। उन्होंने मुझे वो सर्टिफिकेट भेजा जो कल्चरल मिनिस्टर ने ऑफिशियली तारा को सेलेक्ट किया था ऑस्कर में जाने के लिए। तो मैंने इस चीज़ का जवाब किसी को नहीं दिया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे, मेरे साथ बिहेव किया, पर गॉड ने इसका उनको जवाब दिया
वहाँ पर।
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं इसमें ट्रूली बिलीव करती हूँ कि जब कोई आपको डाउन दिखाता है तो गॉड आपको लिफ्ट करते हैं।
वेरी नाइस स्टोरी, ये सेकंड स्टोरी आपने बताई।
और इसके अलावा जो मेरी दूसरी फिल्म है कैमरून से जो एंट्री थी ऑस्कर में, वो भी सेम प्रोडक्शंस के साथ थी मेरी, कुमार राज प्रोडक्शन के साथ, कोलैबोरेशन बिटवीन MD4 प्रोडक्शन फ्रॉम कैमरून। तो वो, ये फिल्म यहाँ अमीना बिकती है, ये अफ्रीका में, कैमरून में, सेंट्रल अफ्रीका में रिलीज हुई, और वहां से फिर ऑस्कर की एंट्री बनी।
ये तो मेनस्ट्रीम भी हो गई थी ना ये फिल्म?
यस, वहां पे रिलीज हो गई
है ये बॉडी।
हाँ, यहां भी ना बिकती है।
हाँ।
इट्स अ वेरी फेमस प्ले रिटन बाय आफ्ताब हसनैन।
अच्छा।
जिसमें मैंने अमीना का रोल किया है, और ये साल में 2020 में इंडिया में भी रिलीज होगी। और इसमें मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा अनंत महादेवन जी के साथ काम करके, उन्होंने मेरे साथ मतलब लीड रोल प्ले किया है, राइटर का रोल उन्होंने किया है।
दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, अरे माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, पर गम है यहाँ किसको आती है तो रात आए, हम रात के सीने में एक शम्मा जला देंगे, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के
का कुछ कनेक्शन विद न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी है
जी,
इन लॉस एंजलिस। न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी इन लॉस एंजलिस,
हाँ जी।
न्यूयॉर्क में क्यों नहीं है वो?
न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी फिल्म स्कूल है और इनकी पहली ब्रांच न्यूयॉर्क से शुरू हुई थी, तो इसके लिए इट्स कॉल्ड न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी। पर अभी उन्होंने बहुत बड़ा स्टूडियो, बहुत बड़ा स्कूल बनाया है लॉस एंजलिस में। तो मैंने वहां से इसलिए किया क्योंकि वहां पे पूरा हॉलीवुड है। तो ये लोग, जब मेरी फिल्म तारा ऑस्कर में गई तो उसके बाद मुझे वन ऑफ द स्टूडेंट, वो लोग कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में से जो उनको लगता है कि ये स्पॉन्सरशिप के लिए फ्यूचर हैं एक्टर्स। तो उन्होंने मुझे एक स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर्ड कोर्स प्रोवाइड किया। बहुत लक की बात है ये। तो आई डोंट थिंक कि इंडियन किसी एक्ट्रेस के साथ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी स्पॉन्सर्ड किया है न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ने। तो मैं उसमें सेलेक्ट हुई और मैंने वहाँ पे एडमिशन हुआ लॉस एंजलिस में मेरा, और मैंने वहाँ से पढ़ाई की एक्टिंग फॉर फिल्म, तो मैंने वहाँ से सीखा. तो इंडियन तो मैंने कोर्स किया है बैरी जॉन से. फिर उसके बाद मैंने अपनी हायर स्टडी एज एन एक्ट्रेस मैंने फिर न्यूयॉर्क से की.
तो वहीं रह जाना चाहिए था ना, अभी तो यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं. अब वहाँ से वापस आई क्यों यहाँ पे?
मैं अभी वहाँ पे भी हूँ और मैं यहाँ पे भी हूँ.
हाँ, ये मैंने देखा है
जी.
तो ऑल द टाइम आपका कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है
जी. और नॉट ओनली अमेरिका, मैं जिनेवा में काम कर रही हूँ, मैं अमेरिका में काम कर रही हूँ, मैं अफ्रीका में काम कर रही हूँ, और मैं इंडिया में काम कर रही हूँ. तो मैंने ये 4 कॉन्टिनेंट्स तो अपने बना लिए.
La 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 साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना. ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना. फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना. ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना. धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है. इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है. प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना. ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना. तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे. मेरा जीवन जलती भूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे. तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना. ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या. क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
इसके अलावा आपने कुछ ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट में भी आप काम करती हैं, एक तो क्या है और आपको टाइम कहाँ से मिलता है?
मेरा ना शुरू से ये सोच रही है कि मुझे लोगों के लिए भी कुछ करना है। मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है पर मुझे अच्छा लगता है।
मेरे उम्र के लोग करते हैं जो 60 क्रॉस हो जाते हैं, कुछ करने को नहीं है तो हम थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन कर लेते हैं।
पर मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि मुझे लोगों की हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक्टिंग करना मुझे जितना अच्छा लगता है उतना ही अच्छा मुझे गरीबों के साथ टाइम स्पेंड करना या किसी भी तरह किसी की हेल्प करना अच्छा लगता है। तो मुझे जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने, ठीक है, मैं जिस दिन मैं आई थी फर्स्ट डे इन मुंबई, उसी दिन मैं ऑडिशन के लिए भी गई थी, एक सीरियल के ऑडिशन के लिए। जब मैं ऑडिशन दे रही थी तो उसके साथ मुझे सडनली ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई जहाँ पे मैं एनजीओ का फेस बनने लगी। जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा काम करने लगी तो मैंने देखा कि मुझे ये भी काम मिल रहा था। तो मैंने उसके कभी पैसे नहीं लिए ना, मैंने पैसे की बात की। एक हेलमेट प्रमोशन का था दिल्ली में, एक एनजीओ है सेव आर वुमेन। तो लड़के जैसे हेलमेट पहनते हैं, लड़कियां हेलमेट नहीं पहनती हैं और इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो उसके लिए जब मुझे अप्रोच किया गया, उसमें मैन के लिए प्रमोट करता है जॉन अब्राहम और वुमेन के लिए मैं फेस बनी उसका। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि मेरा ये भी पैशन है, इसके लिए सडनली मुझे लगा जो चीज़ आप चाहते हैं करना वो आपके सामने आती है। तो मुझे याद है कि जब मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी अपने सोशल वर्क को लेके, तो मेरे एक जो डायरेक्टर फ्रेंड हैं उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज भेजा और मुझे कहा कि अभी तुम सिर्फ अपनी एक्टिंग में फोकस करो, अभी तुम्हें सिर्फ मूवीज़ करनी चाहिए और ये करना चाहिए, काम करना चाहिए, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे लास्ट पड़ाव होगा।
यही बताया मैंने।
हाँ जी, तो उसने जब ये कहा तो मैं उसकी बात से सहमत नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी की हेल्प करने का कोई टाइम नहीं बना, कोई एज नहीं है, कोई टाइम नहीं है। अगर भगवान आपको कुछ देते हैं कि भाई मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ
तो कर दो।
हाँ, तो वो टेस्टिंग भी होती है आपकी कहीं ना कहीं कि ये लड़की डिजर्व करती है इतना देना या नहीं। तो जब आपके सामने ऐसा कोई आता है तो मैं उसे हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, या किसी भी तरह से कोई फाउंडेशन आता है या कोई प्रोजेक्ट आता है, चैरिटी इवेंट आता है, तो मैं कभी भी उसमें मैं पैसे की बात नहीं करती हूँ।
वेरी नाइस। कुछ आप एक वर्ल्ड एम्बेसडर भी हैं,
हार्ट फॉर इंडिया फाउंडेशन।
हार्ट फॉर इंडिया फाउंडेशन
जी,
प्रिंसेस फ्रांसवाज तुर्जा।
यस,
क्या है ये?
ये काफ़ी बड़ा फाउंडेशन है, बेस्ड इन स्विट्ज़रलैंड जिनेवा। जैसा मैंने बोला, मैं जिनेवा में भी काम करती हूँ। तो ये बिलोंग करता है प्रिंसेस फ्रांसवाज तुर्जा, जो रोमानिया की प्रिंसेस हैं। अभी तो रोमानिया में वो किंगडम नहीं है, अभी वो लोग शिफ्ट हो गए हैं स्विट्ज़रलैंड में, और उनको इंडिया से बहुत प्यार है। तो उन्होंने एक इंडिया में फाउंडेशन खोला है जिसके अंडर हम लोग 3,500 किड्स की एजुकेशन साउथ ऑफ इंडिया में हेल्प करते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। और इंडिया में जो एजुकेशन जो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती है वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो अच्छा। जैसे साउथ ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, इंक्लूडिंग YMCA जिसको हम स्पॉन्सर्ड करते हैं, और जैसे मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक ही टाइम का मील प्रोवाइड करती है, तो उसके साथ हम एक और मील प्रोवाइड करना, अनदर सेट ऑफ यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, बुक्स प्रोवाइड करना, ट्यूशंस प्रोवाइड करना। तो वो जहाँ पे वो लोग नहीं अपने आप को सपोर्ट कर पाते हैं एजुकेशन में, वहाँ पे हार्ट फॉर इंडिया वो बच्चों को सपोर्ट करती है पढ़ाई के लिए।
तो कैसे करते हैं, डोनेशन देते हैं या एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं उसमें एजुकेशन बिट में?
एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव भी है, पूरा ऑफिस है हार्ट फॉर इंडिया फाउंडेशन का, जो जो भी बच्चों को स्कूल में जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो हार्ट फॉर इंडिया यहाँ से हेल्प प्रोवाइड करती है, जो हेल्प स्विट्ज़रलैंड और ऑल ओवर द वर्ल्ड आती है। कि जैसे अभी एक जिन्होंने डोनेशन दिया था वो अमेरिका की बहुत बड़ी एक कंपनी है जो हेयर सेल करते हैं, क्योंकि सारे हेयर इंडिया से जाते हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया से हमें इतना कुछ मिला है, हम इंडिया को कुछ देना चाहते हैं। तो वो जैसे हार्ट फॉर इंडिया के थ्रू उन्होंने डोनेशन दिया, तो और बच्चे की पढ़ाई हम लोगों ने स्पॉन्सर की, तो उसकी मैं वर्ल्ड एम्बेसडर हूँ, फीमेल वर्ल्ड एम्बेसडर। और उसमें जो मेल एम्बेसडर हैं मेरे साथ वो हैं शेफ विनीत भाटिया, वर्ल्ड फेमस शेफ हैं, सो ही इज द मेल एम्बेसडर।
हाउ नाइस।
उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो,
कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम हैं वो मुलाकातें,
नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम हैं और तुम शोला बन जाया करो,
कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
उठी सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। जाने कहाँ ढंग गया है,
किसे है फिकर किसे क्या पसंद, प्यार के जहाँ में रजामंद जब हम
तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क, मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो,
कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो,
कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम हैं वो मुलाकातें,
नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम हैं और तू शोला बन जाया करो,
कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
उठी सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
ला 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 ला।
ये आपके ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा और बताइए।
ओके
आपके एक्ट्रेस तो है ही आप, उसका भी पूछेंगे फिर से, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। क्या एग्जैक्टली करते हैं आप, पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, क्या होता है इसमें?
पर्सनली इन्वॉल्व होती हूँ। जैसे हम लोगों ने दिवाली के लिए गाला डिनर अरेंज किया था, महाराजा डिनर इन जिनेवा,
अच्छा?
तो उससे हम लोगों ने फंड रेजिंग किया करा. तो उसमें मैंने परफॉर्मेंस किया था, डांस परफॉर्मेंस फ्रॉम माय साइड, ये गाने पे, दीवानी मस्तानी सॉन्ग पे.
अच्छा.
तो उसमें मैंने परफॉर्मेंस किया था. वहाँ पे कम से कम एकदम क्रीम ऑफ पीपल, इंक्लूडिंग हिंदुजाज फैमिली, क्योंकि वो लोग भी जनेवा में हैं, तो उनकी पूरी फैमिली की भी टेबल थी. जब मैं वहाँ पे थी तो हिंदुजाज, प्रकाश हिंदुजाज ने मुझे और प्रिंसेस को लंच पे भी बुलाया था. सो वी हैड लंच उनके ऑफिस में, जो लंच, हाँ, तो वहाँ पे हम लोगों ने, मैं हिंदुजा बैंक में गई थी. तो इस तरह से जो फंड रेजिंग होती है, जो भी टिकट का कॉस्ट होता है, वहाँ पे फूड पूरा प्रिपेयर्ड बाय विनीत भाटिया था. तो शेफ विनीत भाटिया ने पूरा वो इंडियन डिनर ऑर्गेनाइज किया था. और वहाँ पे 200 टू 250 लोग आए थे जहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस किया था, जहाँ पे मुझे लगता है कि क्या मैं ऐड कर सकती हूँ एज अ वर्ल्ड एम्बेसडर. जो मैंने सेव आवर वुमेन बताया, उसमें उन लोगों ने पोस्टर्स में मेरी फोटोज यूज की, मेरे कुछ इंटरव्यू यूज किए एज अ वुमेन, हाउ आई फील कि भाई हेलमेट पहनना कितना जरूरी है. क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है. लड़कियां पीछे से गिर जाती हैं और सर आपका, हाँ, उस सर को अगर कुछ हो गया तो बहुत डिफिकल्ट है लाइफ, बहुत डिफिकल्ट. कभी परफॉर्मेंसेस, कभी जस्ट बी देयर. उससे पहले जो इवेंट था उसमें मैंने एक स्पीच दी थी एज एन इंडियन एक्ट्रेस. तो इस तरह से जहाँ पे भी जो भी ऐड कर सकती हूँ मैं, वो ऐड करने की कोशिश करती हूँ.
गोइंग बैक टू जो पहले अपने बात करे,
जी,
ऑस्कर नॉमिनेशन में आपके दो फिल्म्स नॉमिनेट हुई हैं.
जी,
आई डोंट थिंक कोई भी इंडियन की इतनी हुई है.
नहीं हुई है,
एक शायद हुई होगी,
हाँ.
दो किसी की नहीं हुई है.
नहीं, तो वहाँ पे भी मैं आती हूँ कि मैं पहली इंडियन एक्ट्रेस हूँ जिसकी दो फिल्में ऑस्कर में गई हैं.
तो कैसा लगता है ये?
मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं ऐसे कैटरीना कैफ या की तरह फेमस नहीं हूँ, पर मैं जितना भी काम कर रही हूँ बहुत
दिल से
और सब्सटेंस के साथ कर रही हूँ. अपने प्रिंसिपल और एथिक्स को साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ जो गोल है वो अपने आप को सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं है कि मैं शाहरुख खान के साथ फिल्म में आ जाऊं और मैं 50 फिल्म्स कर लूं एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. मेरा सिर्फ वहाँ तक का विजन नहीं है, मेरा काफ़ी आगे का विजन है. मुझे जैसे सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे अपना नाम और अपना काम और अपनी फैमिली, जो मतलब एक हमेशा देखती है कि भाई उनकी बेटी क्या कर रही है, तो वो भी मुझे साथ में रख के अपना वजूद ना खोते हुए आगे बढ़ना है.
कुछ भी नहीं, मेरी कहानी.
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ।
तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
एक प्यार का नगमा कर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छा कर ढल जाना है। परछाइयां रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।
एक और बात बताइए
जी।
एक बार अपने बैठे थे कहीं पे शाम को, आपका मैं ये बैकग्राउंड पूछना भूल गया, बचपना आपका, स्कूल कॉलेज, क्या आपने मुझे ये बताया था कि आप इंडिया से नहीं है, कहीं और से बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, ऐसा कुछ था या इधर कहीं?
मैं इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली वाली लड़की हूँ।
हाँ हाँ।
मैं, मेरी मम्मी आगरा से हैं, मेरे फादर बुलंदशहर से हैं, और मेरे फादर सुपरवाइजर थे कंस्ट्रक्शन में। फिर मैं सबसे छोटी बेटी हूँ घर की, मेरे तीन भाई बहन हैं। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ क्योंकि मेरे फादर तब तक दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, और वहाँ से, हाँ, तो मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, वहीं से मैंने पढ़ाई की है, और टोटल दिल्ली वाली लड़की हूँ मैं।
ये बैकग्राउंड के साथ फिल्म में कैसे चली गई? हाउ डिड इट हैपन?
मैं बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी।
okay.
और मैं जब छोटी सी थी तो मैं डांस करती थी पुरानी एक्ट्रेसेस के सॉन्ग्स पे। और मैं जब डांस करती थी, परफॉर्मेंस देती थी, तो मेरे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते थे। तो मुझे याद है कि मेरे जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो सब लोग मेरे घर पे सिर्फ मेरा डांस देखने आते थे कि अरे अरे प्लीज़ वो वाला डांस करके दिखाओ ज़रा, अच्छा अच्छा वो दिखाओ। तो और मैं, एक चीज थी, मैं इतनी मूडी थी कि जब मुझे डांस करना होता था या हाँ, मैं तभी करती थी, नहीं तो दस लोग बैठे हों मैं नहीं करती थी। और अगर मुझे मन है तो मैं, अगर एक इंसान बैठा है तो भी करती थी।
तो क्या हुआ, कोई प्रोड्यूसर ने कभी देख लिया? फिर भी बड़ा बैरियर होता है टू मूव फ्रॉम देयर
जी
टू एन एक्चुअल बीइंग इन द इंडस्ट्री
जी. तो वहां से फिर जर्नी शुरू हुई कि वो मेरा पैशन था एक्ट्रेस बनना. और उसके बाद मैं अपने जब कॉलेज में थी तो मैं ड्रामेटिक्स में थी, मैं प्लेज वगैरह करती थी, ड्रामेटिक ग्रुप में थी. तो मैंने एक प्ले भी किया था जिसमें मैंने साइड रोल किया था, छोटा एक पागल लड़की का रोल किया था.
अच्छा.
तो वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ. और कहीं ना मेरा ये जो पैशन था, मेरा ये ड्रीम था, वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो रहा था. पर वो सडनली कैसे मुझे याद आया, मैंने अपनी एक स्कूल की फ्रेंड को टीवी पे देखा फेयर एंड लवली के एड में. तो बस वहां जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ. मतलब मेरा तो ये ड्रीम है, मतलब मैं क्यों यहाँ पे हूँ और क्यों. तो वहां से सडनली मेरी लाइफ ने जो टर्न लिया वो, फिर फैमिली को, मुझे लगा फैमिली को मनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो मैंने वही मेरी फ्रेंड से फेयर एंड लवली में जो आई थी, उसका नाम है मौलश्री, तो उसको मैंने कॉल किया. तो उसने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी. उसने बोला कि देख रेखा, अगर तुझे एक्टिंग में जाना है
बॉम्बे चले जाओ.
नहीं, उसने बोला कि फिर प्रोफेशनली जाओ, तुम एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करो. तो ये एडवाइस वहां से आई. उसको एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करना था पर वो कभी कर नहीं सकी. तो मैंने इमिडिएटली ये चीज, मेरे बड़े भैया हैं जो सबसे बड़े हैं घर में, उनको मैंने बताई. तो मेरे भैया मुझे बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल लेके गए. उन्होंने बोला अगर कुछ करना है तो फिर, अगर यही तुझे करना है तो फिर फुल टाइम करो, पार्ट टाइम कुछ नहीं. क्योंकि मैंने डरते डरते, मुझे लगा पता नहीं फुल टाइम कोर्स की परमिशन देंगे या नहीं देंगे. तो मेरे भाई ने ये बात कही मुझे. तो वो कंप्लीट करने के बाद कोर्स, फिर मैं सडनली ऐसी एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि मैं मुंबई आ गई. क्योंकि मेरी जो एक स्कूल में एक लड़की थी वो मुंबई आ रही थी. तो मैंने
साथ में,
हाँ, तो मुझे एक पोर्टफोलियो कराना था. तो मैंने कॉल किया उस लड़की को, क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो फोटोग्राफर थी उसने मुझे बोला कि अगर आपको जानना है कि मैं कैसा काम करती हूँ तो तुम ये लड़की से बात कर लो. तो मैंने उसे कॉल किया और उसके फादर ने फोन उठाया. तो उसके फादर ने बोला रूपा तो बॉम्बे जा रही है दो दिन में, तो तुम भी क्यों नहीं चली जाती हो उसके साथ. तो इतना जल्दी ये प्लान बन गया. इमिडिएटली मैंने अपने भैया को जाके फिर से बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है. तो मेरे भाई ने फिर टिकट्स बुक की. फिर हम लोग 3 दिन के बाद वहाँ पे बॉम्बे पहुँच गए. मेरे भैया भी मेरे साथ आए, उन्होंने मेरे को सब यहाँ पे सेटल किया और फिर वो चले गए.
फैमिली सपोर्ट आपको बहुत मिला है?
हाँ,
नॉर्मली फैमिलीज खींच लेते हैं
जी,
नहीं ये सब चीज में मत करना, बॉम्बे बहुत बुरी जगह है,
यस,
वहाँ मत जाना, फंसा लेंगे. और आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट करा.
हाँ,
इसके लिए आप आज आकर हमारे यहाँ रेडियो पे बैठी.
बिल्कुल. और एक और चीज बताती हूँ मैं, जो ऑडियंस जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब एक लड़की को ना घर में, फैमिली में बड़े भाई और फादर का सपोर्ट होता है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है. अगर ये विश्वास मेरी फैमिली को, मेरे फादर को मुझ पे नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं बढ़ती.
बहुत मुश्किल हो जाता है. सी, टैलेंट तो सब में कम ज्यादा रहता है
जी,
बट और भी चीजें साथ में आती हैं जब जाके उभरता है वो टैलेंट
जी,
जब जाके दुनिया को देखने मिलता
है. हाँ, अगर मेरे फादर को मुझ पे ट्रस्ट नहीं होता और वो दुखी होते तो उनको दुखी करके शायद मैं काम नहीं कर पाती. क्योंकि हर इंडियन लड़की अटैच होती है अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से. तो अगर उसको माँ बाप का और उसके भाई बहनों का अगर सपोर्ट मिल गया तो फिर तो स्काई इज द लिमिट. ये सच
बहुत इंडियन लेडीज विमेन
जी
ऊपर आ रही है नाउ बिकॉज ऑफ फैमिली सपोर्ट.
बिल्कुल.
एंड सर्कमस्टेंसेस एंड ऑफ कोर्स द टैलेंट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट.
यस.
आपने शुरू में थिएटर भी करा था, थिएटर में शुरू में करा या बाद में?
शुरू में
दिनेश ठाकुर के साथ।
हाँ, उसकी भी स्टोरी
है। कितनी स्टोरी सुनाएंगे, एक ही दिन में खत्म कर देंगे?
क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है एक स्टोरी से। मैंने ये जितनी भी चीजें हुई, मैं दिल्ली से जब आई तो कुछ प्लान करके नहीं आई थी। सिर्फ जो बेसिक प्लान था मेरे दिमाग में वो ये था कि मुझे लीड एक्ट्रेस बनना है और मुझे फिल्म्स ही करनी है और मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरी फैमिली को प्राउड हो। ये थॉट के साथ आई थी मैं। तो जब मैं एक ऑडिशन में थी, एड के ऑडिशन में, तो वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड बना, जो एक उनके साथ जो वो रूम वगैरह शेयर करते हैं, वहाँ पे एक एक्टर था जो दिनेश ठाकुर के ग्रुप में काम करता था। तो हम लोगों की फ्रेंडशिप हो गई वहाँ पे जब मैं ऑडिशन में गई। उसका नाम था मोगली। तो मोगली ने मुझे मैसेज किया सेम डे। वो ऑडिशन के बाद तो मैं आ गई, वो ऑडिशन में मुझे कुछ नहीं मिला ऐड। घर आने के बाद मोगली का मुझे मैसेज आया कि वुड तुमको दिनेश ठाकुर के ग्रुप में काम करना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन दिनेश ठाकुर है। बस मैंने बोल दिया हाँ। तो उन्होंने बोला तो आज ही भवंस कॉलेज पहुंच जाओ, वहां पे उनकी रिहर्सल चल रही है और उनको एक लीड कैरेक्टर रिप्लेस करना है। तो मैं वहां पे पहुंच गई। मैंने जब दिनेश ठाकुर जी को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि अरे इनको तो मैंने देखा है मूवीज में। फिर उनकी वाइफ प्रीता माथुर जी को मिली, उन्होंने जिस लाहौर नहीं देखा कि वहां पे रिहर्सल चल रही थी, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक डायलॉग बोलने को कहा कि कितनी शानदार हवेली है, लाइक अ यंग गर्ल। तो यंग ही थी मैं। तो वो एक मुस्लिम लड़की का रोल था, तन्नो, वन ऑफ द लीड रोल। और धर्मेश तिवारी जी मेरा फादर का रोल कर रहे थे उसमें। तो वो रोल मुझे सेम डे उन्होंने कहा आके स्क्रिप्ट ले जाओ।
अरे वाह।
तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थिएटर से, और फिर मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट की उनके साथ मोर देन 200 शोज.
वाओ रियली.
नॉट ओनली जिस लाहौर देखा के, उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरा भी एक प्ले दिया जिसका नाम था हाय मेरा दिल. तो हाय मेरा दिल में अगले दिन शो था, और दिनेश ठाकुर और प्रीता जी ने डिसाइड किया कि रेखा को बुलाओ और वो कर देगी. पता नहीं सडनली किसी ने बैक ऑफ किया था. और मैं गई स्क्रिप्ट लेने, मैंने तो प्रीता जी ने दिनेश जी को भी बोला कि अरे कैसे करेगी, वो कल ही शो है. तो उन्होंने बोला वो कर लेगी. तो उनका ट्रस्ट देख के मैं, मतलब मुझे करना ही था, मतलब उसमें कोई इफ और बट था ही नहीं. तो वो भी बहुत अच्छा हुआ थे मेरे शोज.
हमारे काफी लोग सुन रहे हैं, तो आपको कुछ बताना है या कोई गाइडेंस देना है जिनको बनना है लड़कियों को
जी,
ऐसा कुछ बोलना चाहें तो आप प्लीज बात करिए, बताइए.
मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें कि मैंने इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियोस किए हैं. मैंने अफ्रीकन बिगेस्ट स्टार्स जो हैं वहाँ के AKA वर्ल्ड वाइड और स्टैनली इनाओ, तो उनके साथ भी मैंने म्यूजिक वीडियोस किए हैं. तो वो काफ़ी टाइम MTV पे मेरे वीडियोस चलते थे. तो जो कैमरून में जो अफ्रीका में जो इंडियन कम्युनिटी है, तो उन लोगों ने सडनली मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया, फेसबुक पे अप्रोच करना शुरू कर दिया. तो वहाँ पे भी काफ़ी इंडियन कम्युनिटी में मैं रिकग्नाइज होने लगी, लोग मुझे जानने लगे. और डेफिनेटली मैं एडवाइस देना चाहूँगी जितनी भी लड़कियाँ हैं और लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं. मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि पुट गॉड फर्स्ट एंड वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप. अगर कुछ आपका ड्रीम है,
परस्यू करो.
बिल्कुल. तो आपको अपने ऊपर और अपने गॉड के ऊपर विश्वास करके और उसके लिए मेहनत करते हुए और कभी नहीं उस ड्रीम को छोड़ने का सोचते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी. ये मैं बिलीव करती हूँ.
थैंक यू रेखा राणा जी.
थैंक यू सो मच
आप हमारे स्टूडियो में आए. ये वन ऑफ आवर बेस्ट रिकॉर्डिंग हुआ है. हम आपको बता देंगे रेडियो पे कब सुनना है और हम आपको लिंक भी भेज देंगे.
थैंक यू सो मच. आई एम ऑनर्ड.
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छू लो आसमान. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपसे मुखातिब हुई रेखा राणा, जो है जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड विनिंग अभिनेत्री एंड फिलेंथ्रोपिस्ट. इस कार्यक्रम के निर्माण में सहयोग मिला नियति भाटकर और कंचन गुनेले से. FM गोल्ड की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने.